SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी को सत्तारूढ़ महायुति से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। महायुति गठबंधन के तीनों दलों भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार ने सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को झुटलाते हुए 288 में से 230 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में फिर से सरकार में वापसी की है। भाजपा ने 132, शिवसेना शिंदे ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 40 सीटों पर बड़े वोट प्रतिशत के साथ विजय हासिल की। लोकसभा में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद महाविकास अघाड़ी केवल 28 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने 16, शिवसेना उद्धव ने 10 और एनसीपी शरद पवार ने मात्र 2 सीटें जीती। 10 सीटें अन्य के पक्ष में गईं। हार के बाद कांग्रेस और अन्य दलों ने एक बार फिर चुनाव आयोग की सत्ता के साथ मिलीभगत और ईवीएम मशीनों में बेईमानी का आरोप लगाया है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को।
लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया, शेरो शायरी जरूर आई। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए। हम लगातार हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है चुनाव खत्म होने के बाद, ये कैसे हो रहा है, जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद?
शिवसेना उद्धव दल के प्रवक्ता संजय राउत ने इन नतीजों को उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने की साजिश बताया।
हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया। ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्थान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नतीजों को उनके दिए महामंत्र की जीत बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला।
साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी एसटी ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे, वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है।
बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो महाराष्ट्र में महायुति की जीत का कारण शिंदे सरकार की हाल ही में शुरू की गई लाडली बहन योजना, बिजली बिलों का माफ करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार तंत्र रहा। झारखंड में नतीजे महाराष्ट्र के बिल्कुल उलट रहे। यहां भाजपा का एक है तो सेफ है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नैरेटिव नकारते हुए मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को दोबारा चुना, जिसने 81 में से 56 सीटों पर विजय प्राप्त की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34, कांग्रेस ने 16, राष्ट्रीय जनता दल ने 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 2 सीट जीती। भाजपा की अगुवाई में एनडीए केवल 24 सीट ही जीत पाया, जिसमें भाजपा ने 16 सीटें हासिल करी। झारखंड के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 4 लाख से ज्यादा अंतर से जीत ने कांग्रेस को सांत्वना जरूर दी। अमेरिका के बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को घूस देने के आरोप में अदालत में पेश होने के समन जारी किए हैं। समन में एसईसी ने कहा है कि 20 दिनों के भीतर आपको संलग्न शिकायत का उत्तर या संघीय नागरिक प्रक्रिया नियम के नियम 12 के अंतर्गत जवाब देना होगा। यदि आप उत्तर देने में विफल रहते हैं तो शिकायत में मांगी राहत के लिए आपके विरुद्ध डिफॉल्ट निर्णय दर्ज किया जाएगा। यह समन जारी होने से अडानी समूह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है। अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिंदर रोबी सिंह ने एक्स मीडिया ऐप पर कहा कि अडानी समूह की किसी भी पोर्टफोलियो कंपनी पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार और अडानी को आड़े हाथ लेते हुए इस बारे में सोशल मीडिया ऐप पर एक पोस्ट साझा की।
There will now be two flanks of defense which the BJP will employ. Number one is they will undoubtedly get a random FIR filed in some BJP ruled state against Mr. Adani. And then use that as an excuse to tell the US that we have proceedings going on against him in this country and hence we cannot extradite him or have him come to the US. That's going to be one. The second thing is they will get some BJP proxy to file in the Supreme Court either on the existing case or on some half-baked case which the Supreme Court will not admit or they will dismiss. And the Adani and the BJP will then use that as a defense like they did in the past to say that, देखो, Supreme Court ने dismiss कर दिया, we have been validated, we have been given a clean chit.
अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश एक बार फिर सांप्रदायिक मुद्दे की चपेट में आ गया है। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में पुरातन में मंदिर होने की जांच करने के लिए एक सर्वे टीम पहुंची। सर्वे का आदेश संभल की जिला अदालत ने एक याचिका के आधार पर फौरन दिया था। याचिका में कहा गया था कि जिस जगह पर शाही मस्जिद है वहां पहले हरिहर मंदिर था। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि सर्वे टीम के साथ कई उपद्रवी तत्व भी देखे गए जो भड़काऊ नारे लगा रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। पुलिस द्वारा जमा भीड़ पर लाठीचार्ज करने के बाद लोगों ने पत्थरबाजी की और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसके दौरान पुलिस की गोली से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस का कथन है कि भीड़ के उपद्रवी होने के बाद उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस के अनुसार हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों के पैर में गोली लगी है और पुलिस अधीक्षक समेत 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ सरकार और भाजपा पर जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है और सर्वोच्च न्यायालय से तुरंत घटना का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। और अब समाचार खेल जगत से। पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी 487 रन पर घोषित कर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का विशाल स्कोर देने के बाद भारत जीत के मुहाने पर खड़ा है। आज चौथे दिन लंच ब्रेक तक भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी मात्र 104 रनों पर आउट कर दिए थे। इस टेस्ट मैच के हीरो यशस्वी जायसवाल, कप्तान जसप्रीत बुमराह और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे। यशस्वी ने दूसरी पारी में आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी होते हुए 297 गेंदों में 161 रन बनाए। उनका हौसला देख विराट कोहली ने अपने ऊपर से दबाव हटा, फॉर्म में वापस आते हुए 143 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोके। पहली पारी में बुमराह ने 18 ओवर में केवल 30 रन देकर 5 विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात्र 104 रनों पर पेवेलियन पहुंचा दिया। दूसरी पारी में भी बुमराह अब तक 2 विकेट ले चुके हैं जबकि सिराज ने 3 विकेट चटकाए हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।